الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقال الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح البين وإصلاح ذات البين امام زرنا الدين عليه الصلاة والسلام ہماری سماجی ذمہ داریوں کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور دعا کی شکل میں بارگاہ عزدی میں کہ پالنے والے ہمارے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم سماج میں عدل و انصاف کو پھیلائیں, ہم لوگوں کو اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی نصیحت کریں. اگر اختلاف اور تفرقے اور جنگ کی آگ بھڑک رہی ہو تو اسے خاموش کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو ہمیں دونوں کو یہ جو ہے ملانے کی توفیق عنایت فرما. لیکن یہ ذمہ داریاں بہت اہم ذمہ داریاں ہیں, کام اتنا آسان نہیں ہے. لیکن السلام علیکم, ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے, کچھ ہتھیاروں کی احتیاج ہے. وہ ہتھیار کیا ہیں, وہ ذریعہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں, بحسن و خوبی ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا شمار صالحین میں ہو, ہمیں صالحین کے زیور سے خدا یا آراستہ کر دے اور متقین کی زینت ہمیں عنایت فرما دے. کاہے کے لیے ساری چیزیں ہیں, فی بسط العدل, سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے, انسانوں کو اس قابل بنا دینا کہ وہ خود سے اپنے سماج میں عدل و انصاف کو قائم کریں. عدل سے کیا مراد ہے, کچھ عدل کا معنی یہ لیتے ہیں, یعنی یہ جو ہے ظلم نہ کرنا عدل ہے, ظلم کے مقابلے میں عدل, یعنی کسی کا حق نہ چھیننا, کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ اٹھانا. کچھ لوگ عدل کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ دینا, وضع الشیء فی محلہ, یہ عدل ہے. کچھ عدل کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اعطاء کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا, یہ عدل ہے. یہ سب عدل تو ہیں لیکن عدل کی تعریف یہ نہیں ہے, یہ جو ہے مصداق عقل عدل ہیں, مفہوم عدل نہیں ہے. مفہوم عدل کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ ان العدل میزان اللہ سبحانہ, عدل کیا ہے, وہ میزان ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کیا ہے وہ میزان, اللہ کے قوانین, اس کے بعد یہ جو ہے فرامین, جو اصول اللہ نے معین کر دیے ہیں, جن چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا, اسی سے لوگوں کو پرکھنا ہے جو اس کے واجبات کو انجام دے رہے ہیں, جو اس کے محرمات سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اس کے واجبات کو انجام دینا عدل ہے, جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا ہے اسے حرام سمجھنا عدل ہے. بقیہ وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں, کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھانا تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اگر آپ اسے حرام سمجھیں گے تو آپ عدل انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے بے گناہ پہ ہاتھ اٹھا دیا, اسے حرام نہ سمجھا, تو آپ یہ جو ہے ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. تو عدل کیا ہے, میزان خدا. عدل کیا ہے, قانون خداوند عالم. کل گفتگو یہاں پر میں نے چھوڑی تھی کہ کیا क्या इंसान खुद अपने लिए कानून नहीं बना सकता? क्योंकि अदल ही के जरिए से कायनात कायम है और अदल ही के जरिए से इंसान इंसान रह सकता है। और अदल क्या है? अल्लाह के बनाए हुए कानून। तो क्या हमें इंसान रहने के लिए, हमें कामयाब जिंदगी ये जो है बसर करने के लिए, क्या वाकई खुदा के बनाए हुए कानून की ये जो है जरूरत है? हम खुद कानून नहीं बना सकते अपने लिए? क्या हमारे पास इतना इल्म, इतनी अक्ल, इतनी शरत नहीं है कि वो कवानीन जो हमें कामयाब बना सकते हैं, हमें हमारी इंसानियत से आरास्ता कर सकते हैं, हम खुद अपने लिए कानून बना ले? अल्लाह के बनाए हुए कानून की क्या जरूरत है? नहीं, इंसान में ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने लिए खुद कानून बना सके। एक आदलाना निजाम, कानून तो इंसान बहरहाल ये जो है बना लेता है, लेकिन ऐसा कानून जो आदलाना कानून हो, ये जो है मुनसफाना कानून हो, ऐसा कानून जो हमारी इंसानियत को सरकोफ न करे, ऐसा कानून जिसके साए में इंसानियत परवान चढ़ सके, क्या ऐसा कानून इंसान बना सकता है? नहीं, ऐसा कानून इंसान नहीं बना सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जिस चीज के बारे में कानून बना रहे हैं, पहली शर्त है कानून बनाने के लिए कि आपको उसके बारे में जो है मालूम, वो चाहे छोटी सी चीज हो या ये जो है बड़ी चीज हो। आप कंप्यूटर किस तरह से ये जो है चलाया जाएगा, आप इसके बारे में कुछ कानून बनाना चाहते हैं, कुछ ये जो है जाबिता बनाना चाहते हैं, तो इस कंप्यूटर के बारे में कौन कानून बना सकता है, कौन जाबिता बना सकता है, कौन रहनुमाई कर सकता है? वो जिसे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, या वो बना सकता है जो कंप्यूटर के हर पुर्जे से वाकिफ है? कौन सा पुर्जा कहां है, किस लिए है, कितनी सलाहियत उसके अंदर है? मामूली सी चीज है। किचन में खाना पकाने आप ये जो है सिखाने जाना चाहते हैं, हम आपको सिखाएंगे ये जो है बिरयानी कैसे बनती है, कोरमा कैसे बनता है, कौन सिखा सकता है? जो ये जो जानता है कि क्या है बिरयानी, क्या है कोरमा, छोटी-छोटी मिसालें हैं सामने की, यानी को चाहे चीज छोटी हो या बड़ी हो, उसके बारे में रहनुमाई वही कर सकता है, उसूल वही बना सकता है जो उससे वाकिफ हो, जो उसे जानता हो। तो क्या हम नहीं जानते? इतने बड़े बड़े ये जो है साइंसदान मौजूद हैं, आज इल्म कितनी तरक्की कर चुका है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है, दूसरे सैयारों के इतना करीब पहुंच चुका है कि तस्वीरें उनकी ले रहा है, यकीनन इसमें शक नहीं है, साइंस ने बहुत तरक्की की है। बहुत सारे ऐसे तारीख गोशे जो इंसान की निगाहों से छुपे हुए थे, आज इल्म की रोशनी में, साइंस की रोशनी में वह तारीख गोशे ये जो है रोशन हो गए हैं। बहुत सारी चीजों की खासियतों से हम वाकिफ नहीं थे, आज वाकिफ हो चुके हैं। बहुत सारे मादिन जो ये जो है जमीन के अंदर छुपे हुए थे, जिनको जिनसे हम आगाह नहीं थे, आज हम उनसे वाकिफ हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इंसान ने साइंस के साइंस की ये जो है मैदान में बेहद तरक्की की है, लेकिन अभी भी कायनात के बहुत सारे राज हैं जो उस पर आया नहीं हुए हैं, मुनकशिफ नहीं है, कि फिर भी काफी चीजों को इंसान ने जो है समझ लिया है। मगर मुश्किल ये है कि इंसान ने सब कुछ तो समझ लिया मगर खुद को नहीं समझा, खुद इंसान अपने से नावाकिफ है। हाँ, एक जाहिल इंसान तो कह देता है हम तुम कहां नावाकिफ, मैं मालूम है हम कौन है, जाहिल इंसान तो दावा कर देता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, जितना इंसान इल्म हासिल करता जा रहा है उतना अपनी पेचीदगियों से वाकिफ होता जा रहा है, हम बहुत पेचीदा हैं, हम इतने सादे जितने ये जो है दिखाई दे रहे हैं इतने सादे हम हैं नहीं। जब इंसान ने इल्म नहीं हासिल किया था, इल्मी तरक्की नहीं हुई थी, तब तो इस बात का दावेदार होता था कि हमें सब मालूम है। तो इंसान कितनी चीजें इंसान के अंदर पाई जाती हैं, आया इंसान में फकत ये जो है जिस्म है या रूह, एक बहस तो यही है। बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो असल रूह को मानते ही नहीं है। इंसान की जिंदगी सिर्फ यही जिंदगी है जो इस वक्त सामने है हमारे, या जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है? मरने के बाद जिस तरह से जानवर ये जो है मर जाते हैं, पेड़ पौधे ये जो है मर जाते हैं, सूख जाते हैं, जब तक हरे भरे हैं सूख गए, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है इनके लिए। जानवर जब ये जो है मर जाता है तो उसके बाद उसकी कोई जिंदगी नहीं है, क्या हम भी ऐसे ही, हमारी मौत भी ऐसी ही है या नहीं? इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है? अभी इंसान तो यही तय नहीं कर पाया है, जब तक यही तय जो है वो नहीं कर पाया कि इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी, अगर वो जिंदगी है तो कैसी जिंदगी है? अगर इंसान कानून ये जो है बनाएगा भी तो इस जिंदगी के लिए बनाएगा, इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी के लिए तो कानून जो है वो नहीं ना बना सकता। और अगर सिर्फ इस जिंदगी के लिए कानून बनाएगा तो कानून नाकिस होगा, अधूरा होगा। जबकि अगर हम इस बात के भी कायल हो जाएं कि उस जिंदगी का इस जिंदगी से गहरा ताल्लुक रब है, उस जिंदगी के लिए हमको जो है मवाद, उस जिंदगी के लिए आजुका इसी जिंदगी से हासिल करना है, तो कितना अधूरा कानून होगा, कितना नाकिस कानून होगा वो। तो पहली चीज तो ये कि इंसान को अभी इंसान ये फैसला नहीं कर पाया है कि हमारे यहां एक चीज है या दो चीज है, सिर्फ जिस्म है या रूह भी है, सिर्फ मादा है या मादे से हटकर के भी कोई चीज है। जिस्म जब ये जो है मर जाता है तो क्या रूह भी जो है मर जाती है? जिस्म के मर जाने के बाद रूह बाकी रहती है? अगर रूह बाकी रहती है तो किस तरह से बाकी रहती है? पूरा मादियून और ये जो है रूहियून दो ग्रोह है। कुछ इंसान असल इसके कायल ही नहीं है कि मादे के बाद भी कुछ है कि नहीं, इस बात के कायल हैं। बड़े बड़े ये जो है फलासफा दो हिस्सों में जाकर के तकसीम हो गए, वो दलायल अपने पेश करते हैं, ये दलायल अपने पेश करते हैं। तो जब इंसान का आलम यह है कि इंसान यही तय नहीं कर पाया कि इंसान सिर्फ जिस्म है या इंसान जिस्म और रूह दोनों का जो है मजमुआ है, हत्ता खुद जिस्म के बारे में भी, जिस्म के बारे में भी जो सामने है जो यकीनी चीजें कहां जिस्म है, रूह के बारे में तो बहस कर रहा है इंसान की रूह है या है भी नहीं, लेकिन जो जिस्म उसकी निगाहों के सामने है भी पूरी तरह से जिस्म को भी नहीं पहचान पाया है। अर्ज किया कि जब इंसान के पास इल्म नहीं था तब तो दावा था कि हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पुराने जमाने के हकीम जी सब जानते थे, उनके पास जो भी चला जाता था जिस मरज का पहुंच गया उसका इलाज उनके पास था, वो ये नहीं कहते थे कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं जानता, आंख का ये जो बीमार गया मैंने आंखों में तकलीफ हो रही है उन्होंने उसको भी दवा दे दी, पेट का बीमार गया मेरे पेट में तकलीफ है उसको भी दवा दे दी, हार्ट वाला गया उसको भी दवा दे दी, टांग टूट गई है उसका भी इलाज कर दिया, सब करता था ना वो, यानी इस बात का दावेदार था कि हम सब जानते हैं, हमें सब मालूम, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हमारी हमारी ये जो है दसरस से बाहर हो। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं है कि आज ये जो है मेडिकल साइंस कल से कहीं ज्यादा तरक्की कर चुकी है, किसी को शक है? इतनी तरक्की के बाद अब क्या आलम है? अब तमाम जो है बीमारियों का एक डॉक्टर मिलता है आपको, वो उन्होंने कह दिया कि मैं आंख का डॉक्टर हूं, वो ये जो है दिल के डॉक्टर हो गए, वो ईएनटी हो गए, वो फला हो गए, वो ढका हो गए, ईएनटी वाला उसके पास चले ये दिल के बारे में हाथ उठा लेता है, जी मुझे नहीं पता इसके बारे में, दिल वाले के पास ये अब दिल भी एक दिल कहां रह गया, उसके में तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, पूरे दिल का भी अब नहीं मिलता डॉक्टर, पूरे एक दिल का भी डॉक्टर नहीं मिलते, छोटी सी आंख, इसी एक आंख में कितने डॉक्टर हो गए हैं, एक ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता जो दावा कर सके कि हम पूरी आंख के बारे में जानते हैं। तो जिस्म का ये आलम है तो सामने है, फिर रूह जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है उसके बारे में किस तरह से इंसान कानून ये जो है बना सकता है जो उसे सादतमंद बना सके। लिहाजा कानून बनाने का हक उसी को है जो इंसान की पूरी हकीकत से वाकिफ है। तमाम जरूरतें इंसान की, क्या क्या जरूरतें हैं, हर जरूरत से जो वाकिफ है वही तो कानून बना सकता है। वो जात ज़ाते परवरदिगार के सिवा कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह कानून बनाता है, अपने अंबिया के जरिए भेजता है। सिर्फ दगिस्तान अंबिया में जो कानून मिलेगा, ऐसा कानून मिलेगा जो दुनिया की सादतों को भी बयान करता है और आखिरत की सादतों को भी बयान करता है, मौत से पहले वाली जिंदगी के लिए भी रहनुमाई करता है और मौत के बाद वाली जिंदगी की भी रहनुमाई करता है। उस वक्त तुम्हें किस तरह से रहना है, उस वक्त का आजुका तुम्हें कहां से फराहम करना है। दबिस्तान अंबिया ही वाहिद ऐसा दबिस्तान है जहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। چاہے وہ جسم کی یہ جو ہے خوراک ہو یا روح کی خوراک ہو. خداوند عالم نے جو نظام جو قانون انبیاء کے ذریعے بھیجا کہ جو اس دنیا کے بھی کام آئے گا اس دنیا کے بھی کام آئے گا, پوری تعلیمات انبیاء کا خلاصہ ایک لفظ میں کر دیا گیا, وہ ہے تقویٰ. پوری تعلیمات انبیاء کا خلاصہ ایک لفظ میں کر دیا گیا کہ یہ تقویٰ دنیا میں بھی کام آتا ہے, اور یہی تقویٰ جو ہے مرنے کے بعد جو ہماری زندگی عالم برزخ میں بھی یہی تقویٰ کام آئے گا, اور قیامت کے بعد عالم آخرت میں بھی یہی تقویٰ ہمارے کام آئے گا. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 197 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, اس دنیا کے لیے اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو. اس دنیا کے لیے تو ہم لوگ یہ جو فراہم کرتے ہیں نا, کل کیا کھائیں گے, آج صبح سے شام تک کام کیا تھا کل کے لیے نا, کل کیا کھانا ہے, کہاں رہیں گے, کیا کریں گے, انتظام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, کاہے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ اس دنیا میں جو آزوقہ ہمارے لیے ضروری ہے, جو چیزیں اس دنیا میں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم فراہم کر سکیں, تاکہ ہماری زندگی یہاں کے اوپر جو ہے مشکلوں کا شکار نہ ہو. تو اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے کیا ہمیں آزوقہ فراہم نہیں کرنا ہے, وہ آزوقہ بھی یہی فراہم کرنا ہے, وہ آزوقہ بھی یہی فراہم کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اس زندگی دنیا میں دنیا کی زندگی کے لیے بھی سامان فراہم کرنا ہے, اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی سامان فراہم کرنا ہے. دنیا کی زندگی کے چاول آٹا دال گوشت کپڑا یہ تمام چیزیں ہیں, علیکم السلام. آخرت کی زندگی کا آزوقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آزوقہ فراہم کرو, بہترین آزوقہ وہاں کا تقویٰ ہے, بہترین آزوقہ وہاں کے لیے تقویٰ ہے. یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ زندگی کھیل کے لیے نہیں دی گئی ہے. چنانچہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ زندگی کی حقیقت بیان کرتے, یہ زندگی کیا ہے, جو زندگی آج ہمارے پاس ہے, جو ہم جی رہے ہیں, کسی کی عمر 10 سال کی, کسی کی 20 سال کی, کوئی 40, کوئی 50, کوئی 60, کوئی 70, کوئی 80 سال, اس کی بھی عمر, یہ عمر ہے کیا چیز, یہ عمر ہے کیا؟ امام فرماتے ہیں یہ عمر کیپیٹل ہے, سرمایہ ہے. بزنس کرنے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر تجارت میں, ہر یہ جو ہے بزنس میں کیپیٹل چاہیے نا, کیپیٹل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, سرمایہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کچھ لوگ فقط اپنے یہ جو ہے سرمایہ کی روٹی کھاتے ہیں, کیپیٹل کی بہت اہمیت ہے. اللہ نے جو سامان ہمیں خریدنا ہے وہاں کے لیے, وہاں کے لیے جو ہمیں سامان خریدنا ہے, اور سامان خریدنے کے لیے کیپیٹل ہمیں دیا ہے, سرمایہ دیا, سرمایہ عمر کی شکل میں, یہ زندگی کی شکل میں جو ہے ہمارے پاس یہ سرمایہ. کسی کے پاس 100 سال کا سرمایہ, کسی کے پاس 80 سال کا, جس کی جیسی عمر معین ہوئی, یہ کیپیٹل اس کو دے کر کے بھیجا گیا, اور ہم یہ کیپیٹل روزانہ صرف کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. کسی نے اپنی یہ جو ہے 70 سال والے سرمایے میں سے 10 سال صرف کر دیے, کسی نے 20 سال صرف کر دیے, کسی نے 30 سال, کسی نے 40 سال, کسی کا بالکل آخری پیسہ باقی بچا ہے, آخری پیسہ رہ گیا. امام فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی ہے, یہ تمہاری عمر ہے, یہ کھیل کے لیے نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرے نہیں ہے, انجوائے کرنے کے لیے نہیں یہاں آئے ہیں ہم, وہاں کے لیے سامان خریدنے آئے ہیں. بازار ہے, مارکیٹ ہے, پیسہ کیا ہمارے پاس ہے, کیپیٹل کیا ہے, کیپیٹل ہماری زندگی, اور یہ زندگی کیپیٹل ہر روز خرچ ہو رہا ہے, چاہیں یا نہ چاہیں, یہ ہر روز خرچ ہو رہا ہے, ہر سیکنڈ خرچ ہو رہا ہے. اسی وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنا سرمایہ صرف ہی تو کر رہے ہیں, میں بول رہا ہوں اپنا سرمایہ صرف کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں اپنا سرمایہ صرف کر رہے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمارا سرمایہ صرف ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, کیپیٹل خرچ ہو رہا ہے. آپ لاکھ تالا لگا دے اس کے اندر جو ہے وہ تجوری نہیں, وہ تو خرچ تو ہونا ہے, خرچ ہونے کے بدلے میں کیا ملا ہمیں یہ اہم ہے. خرچ تو کر دیا ہم نے, ملا کچھ یا نہیں ملا, یا سرمایہ چلا گیا بدلے میں کچھ نہیں آیا. اگر سرمایہ کے بدلے میں کچھ مل گیا, اگر کچھ سے کیا مراد, کہتے ہیں نا فلاں انسان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا اور فلاں انسان کو بزنس میں فائدہ ہو گیا, کیا مطلب گھاٹا اور فائدے کا, کیوں کہتے ہیں کہ فلاں کو گھاٹا ہو گیا, कब फायदा होता है कब घाटा होता है। क्या जो माल आप बाजार में लेकर के आए थे अगर माल की कीमत मिल गई आपको तो फायदा, और अगर माल की कीमत नहीं मिली तो घाटा ही होता है ना। घड़ी हम लेकर के आए बाजार में बेचने के लिए भी घड़ी $10 की थी घड़ी, अगर $10 की घड़ी को हमने $10 में बेच दिया माल की कीमत मिल गई हमें, ठीक है हमारा घाटा नहीं हुआ नुकसान नहीं हुआ। अब अगर 10 के बजाय हमको ये जो 12 मिल गए और फायदा हुआ, लेकिन $10 की घड़ी अगर 8 में बिकी 7 में बिकी 5 में बिकी या कोई उठा लेगा लूट ले गया हमसे कीमत ही नहीं मिली तो क्या है इसे, इसे क्या कहते हैं घाटा कहते हैं ना। घड़ी की कीमत तो हमें मालूम है घड़ी कितने की है, कपड़े की कीमत हमें मालूम है, गाड़ी की कीमत मालूम है, ज्यादा हम होशियारी से जाके मामला करते हैं सौदा करते हैं अलैहिस्सलाम। लेकिन अगर कीमत ना मालूम हो माल की तो फिर क्या होगा, हम गए बाजार में मालूम नहीं कि अंगूठी बेचना चाह रहे हैं अंगूठी है कितने की, हमें तो मालूम ही नहीं। तो नादानी में हम इसे कम में बेच के चले आएंगे, लिहाजा अपने माल की कीमत जानना बहुत अहम है। माल हमारा क्या है, जिंदगी हमारी, कैपिटल क्या है हमारा, हमारा कैपिटल हमारी जिंदगी है, जिंदगी की कीमत क्या है, कितने में बेचें इसे, किस चीज के बदले में बेचें कि हमें ये एहसास हो जाए कि हम कामयाब हैं। $1,00,000 में बेच दें, $1,00,000,000 में बेचें, $1,000,000,000 में बेच दें, इसके बदले में क्या मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, शोहरत कबूलियत कीमत मिल गई हमें इसकी। अगर वाकई जिंदगी की कीमत यही है तो जिनको ये चीजें मिल गई वो कामयाब, जिनको नहीं मिली वो घाटे में, जिनको ये चीजें मिल गई वो फायदे में है, जिनको नहीं मिली वो काहे में है घाटे में है। लेकिन अगर इसकी कीमत ये चीजें ना हो, इसकी कीमत कुछ और हो, अगर ये सारी चीजें भी मिल जाएं तो फिर भी हम क्या कहेंगे, घाटे में है ना। $10 की घड़ी थी हमें $9 मिल गया, 8 मिल गया, 7 मिल गया, मगर घाटा ही तो है ना। अब इस जिंदगी की कीमत क्या है ये जो हमें समझा दे उसका हम बहुत शुक्र, उसके हम बहुत शुक्र गुजार होंगे, होंगे या नहीं होंगे, उसके हाथों को बोसा देंगे, उसके कदमों को बोसा देंगे, जो हमें घाटे से बचा ले, जो हमारे कैपिटल की कीमत हमें बता दे। आज अगर हम अहले बैत की इतनी कदरदान हैं, उनके मद्दाह हैं, सनाखा हैं, किस लिए सनाखा हैं, अहले बैत वो हैं अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने हमें हमारे माल की कीमत से आशना किया। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे पास है क्या, कैपिटल क्या है। हम इसलिए उनके मद्दा हैं, सनाखा हैं, उनका एहसान है हमारे ऊपर ये, और बगैर किसी फीस के, बगैर किसी उजरत के हमें एडवाइस दी उन्होंने और बताया कि तुम्हारे माल की कीमत क्या है, हमारे माल की कीमत मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, कान खोल के सुनो, अला अरबी जबान में वहां इस्तेमाल करते हैं जहां लोगों को होशियार करना, आला कान खोल के सुनो, होशियार हो जाओ, अन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समन, होशियार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा सरमाया जो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी की शक्ल में दिया है, इसकी दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है, ना बैंक बैलेंस इसकी कीमत है, ना गाड़ी कीमत है, ना बंगला कीमत है, ना जॉब कीमत है, बेहतर से बड़ा दुनिया का ओहदा भी इसकी कीमत नहीं बन सकता है। लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्नत, तुम्हारी जिंदगी की अगर कोई कीमत हो सकती है तो वो जन्नत और बहिश्त है। फला तबीउहा इल्ला बिहा, जिंदगी का सौदा मत करना मगर जन्नत के बदले में। अगर तुमने अपने कैपिटल को सर्व किया, इस सरमाए को लगाया बाजार दुनिया में आने के बाद, वहां पे लगाया, उन चीजों में लगाया जिसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल सकती है, तो ये सौदा फायदे का सौदा है, वरना दुनिया में कुछ भी मिल जाए ये घाटे का सौदा है, कुछ भी मिल जाए ये घाटे का सौदा है। हमने दुनिया में आने के बाद अपनी जिंदगी को जो सर्फ किया, सर्फ अर्थ किया कि सर्फ करे या ना करे वो तो हो ही रही है। ये तो कैपिटल तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कहां हमने इस्तेमाल किया, कहां इस्तेमाल करें, ये हमारे अख्तियार में है। इस कैपिटल को कहां लगाएं, सरमाए को कहां सर्फ करें, ये हमारे अख्तियार में है, लेकिन सर्फ करना हमारे अख्तियार में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं, तो होना ही होना है सर। एक अख्तियार है हमारे पास कहां सर्फ करें। हमने सरमाए को सर्फ वहां किया जहां जन्नत से तो दूर हो गए लेकिन पैसा हमें मिल गया। हमने सरमाया को वहां सर्फ किया जिसकी वजह से हम जन्नत से दूर हो गए लेकिन हमें दुनिया में ओहदा बड़ा अच्छा मिल गया। हमने सरमाए को वहां सर्फ किया जहां पर हम जन्नत से तो दूर हो गए, खुदा तो नाराज हो गया, लेकिन शोहरत हमें बहुत मिली, मकबूलियत हमें बहुत मिल गई। यह फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? क्योंकि तो कीमत क्या थी हमारी? फायदा किसे कहते हैं? माल की कीमत का मिल जाना फायदा है। माल से कम कीमत मिले ये घाटा है। तो हमारे माल की कीमत है जन्नत है, फला तबीउहा इल्ला बिहा, इसे न बेचना मगर जन्नत के बदले में। अब बता यहां पर अर्ज करता चलो, ये तो आम मोमिनीन की बात है। हम जैसे लोगों की हर सरमाए हर माल की कीमत एक तो नहीं ना होती है। सोने की कीमत अलग है और ये जो है पीतल की कीमत, तांबे की कीमत अलग है। हम लोगों की जिंदगी की कीमत क्या है? जन्नत है। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत जन्नत है, इसे न बेचना मगर जन्नत के बदले में। मौला की जिंदगी की क्या कीमत है? माल तो एक तरह का नहीं ना है, ये तो हम लोगों की जिंदगी की कीमत जन्नत है। ज्यादा हम सारा काम काहे के लिए करेंगे? जन्नत को हासिल करने के लिए। जन्नत मिल गई, हमें कीमत मिल गई, लेकिन जो कसीम नारे वल जन्ना है, तो जन्नत तो जहन्नम का बांटने वाला है, उसके नफ्स की कीमत क्या है? उसके नफ्स की कीमत खुदा ने बयान की। वमन यश्री अंधों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके नफ्स की कीमत मेरी जो है रजा है। वो अपनी जिंदगी में काम इसलिए नहीं करते उन्हें जन्नत मिल जाए, वो जन्नत के लालच में जहन्नम के खौफ से कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि वो उनकी जिंदगी का मकसद, उनके हर अमल का मकसद, हदफ, निशाना हमारी खुशनुदी हासिल करना, रजा। फरमाते थे कि अगर जन्नत और जहन्नम ना होता फिर भी मैं उसकी इबादत करता, मैं जन्नत की लालच में जहन्नम के खौफ में उसकी इताअत नहीं करता, उसकी बंदगी नहीं करता। उसको पहल पाया है इस चीज का। हम जब अमल करते तो जन्नत और जहन्नम हमारे निगाहों के सामने होती है। मौला जब अमल करते थे जन्नत और जहन्नम उनके पसे पुष्ट होती थी, पीछे छोड़ चुके हैं जन्नत और जहन्नम को। तो बहरहाल हम इस दुनिया में जब आए हैं, अल्लाह ने जो हमें कैपिटल दे करके भेजा है, ये हमारी जो है क्या कहते हैं जिंदगी क्या है? हमारी हयात सरमाया है, ये कैपिटल है। कैपिटल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, कैपिटल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता, ये हमारा सरमाया है। और वो सरमाया इसकी कीमत क्या है? जन्नत है। और ये सरमाया ऐसा है, हम चाहें या ना चाहें ये सर्फ हो रहा है, खर्च हो रहा है। एक दिन आएगा कि सरमाया बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, जीरो बैलेंस। उसके बाद हमें देखना कि इसके बदले में हमें क्या मिला। इसी की तरह रहनुमाई फरमा रहे इमाम हसन अलैहि सलातो व सलाम, फरमाते हैं इन्नक लम तज़ल फी हदम उम्रिक। ऐ फरजंदे आदम, तू याद रख, जिस दिन से तू बतने मादर से तूने इस दुनिया में कदम रखा है, जिस दिन पैदा हुआ है, उस दिन से तेरा ये कैपिटल, तेरा ये सरमाया सर्फ होना शुरू हो जाता है। जिस दिन से तुम बतने मादर से इस दुनिया में तुमने कदम रखा है, अपनी जिंदगी के अय्याम खत्म कर रहे हो, यानी कैपिटल सर्फ हो रहा है। किसी का 10 साल सर्फ हो गया, किसी का 20 साल सर्फ हो गया, किसी का 30 साल सर्फ हो गया, किसी का 40 साल सर्फ हो गया, किसी का 50, किसी का 60। अच्छा, ये भी नहीं मालूम है किसी को कितना बाकी बचा है। पता की बात ये भी है ना, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है बाकी कितना बचा है। अगर हमें मालूम है 100 करोड़ डॉलर हैं, चलो 90 करोड़ तक आंख बंद करके खर्च करेंगे, جب 10 کروڑ رہ جائے گا تب سنبھل سنبھل کے, لیکن ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہی ہمارا لمحہ کہیں آخری لمحہ تو نہیں ہے. ابھی کتنے ایسے افراد ہیں تقریر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, بولتے بولتے چپ ہو گئے, بولتے بولتے. ابھی واقعہ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے شیراز کا, ایک عالم دین کا انتقال ہوا, دوسرے عالم دین ان کی سالہ سوار کی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ گئے, دھواں دھار تقریر ہو رہی ہے, اس کے اچانک چپ ہو گئے. کچھ دیر تک لوگوں نے سوچا کہ ایک منٹ کے بعد ہوتا ہے کبھی کبھی تقریر تھوڑی دیر کے لیے, ایک منٹ دو منٹ تین منٹ جتنا زیادہ کچھ چپ نہیں رہتا. اب جب دو چار منٹ گزر گیا تب اٹھ کر کے لوگوں نے ممبر پہ جا کر کے بلایا ڈلایا دیکھا تو چلے گئے, رخصت ہو گئے. معلوم ہی نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس کیپیٹل ہے کتنا, 100 برس کا کیپیٹل ہے, 80 برس کا ہے, 70 برس کا ہے, 50 برس کا, 20 برس کا, 15 برس کا, کچھ نہیں معلوم. کیپیٹل کے بارے میں کچھ نہیں پتا, پر اتنا ہے کہ ہاں اس نے دے رکھا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. یبنا آدم انک لم تظل فی حتم عمرک منذ سقطت من بطن امک, سرمایہ صرف ہو رہا, فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک, جو کیپیٹل تمہارے پاس اس وقت موجود ہے اس سے تم وہ چیزیں حاصل کرو جو تمہارے آئندہ زندگی میں کام آنے والا. اس سرمایہ کو عیاشیوں میں صرف نہ کرو. 2 روپیہ اگر تمہارے پاس ہے, 2 روپے سے 6 روپیہ بناؤ, 10 روپے بناؤ, 20 روپے بناؤ, 30 بناؤ, نہ کہ 2 روپے جو آپ کے پاس ہیں اسے بھی عیاشیوں میں جو ہے صرف کر دے. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک, اس کے بعد امام مومن اور کافر کی پہچان بتاتے ہیں. ایک مومن اور کافر کی پہچان وہ ہے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں, ایک مومن اور کافر کی پہچان وہ ہے جو امام نے بیان کیا. ہمارے یہاں مومن کون ہے؟ جس کا نام فرض کیے محمد عسکری ہو, نام حسن حسین تقی نقی علی جن کا نام ہے وہ کیا ہوں گے؟ پہچاننے کے لیے مومن کو ہم کیا کرتے ہیں, آپ جی آپ کا نام کیا ہے؟ اگر انہوں نے نام کچھ اور سمجھنے, یہ نہیں پہچان, یہ ہے دوسری پہچان. مثال کے طور پر یہ جو ہے مجلس میں آتا ہو, ماتم میں آتا ہو, روتا ہو, نعرہ لگاتا ہو, یہ ساری پہچان ہے جو ہم لوگ عام طور سے مومن کے لیے معین کرتے ہیں. کافر اس کا الٹا. لیکن مومن اور کافر کی پہچان جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے, فَإِنَّ الْمُومِنَ يَتَزَوَّدَ, مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو سرمایہ زندگی اللہ نے اسے دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے آخرت کا سامان فراہم کرتا ہے. وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ, اور کافر لائف کو انجوائے کرتا ہے, انجوائے کر رہا ہے لائف. تو پیسہ ہے کھاؤ پیو اڑاؤ, عیش و عشرت میں صرف کرو, پیسے سے پیسہ نہیں بنا رہا ہے, آئندہ کے لیے کچھ فراہم نہیں کر رہا ہے اپنے لیے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن سرمایہ زندگی سے آخرت کے لیے آزوقہ فراہم کرتا ہے, زاد آخرت فراہم کرتا ہے. اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سرمایہ کو تباہ کر رہا ہے, سرمایہ حیات اس کا ان چیزوں میں صرف ہو رہا ہے جو آخرت پہ اسے کام آنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو بہترین چیز معین کی ہے ہمارے لیے آخرت کے لیے, جو زاد راہ بہتر, ایک لفظ بیان کیا, وہ کیا ہے؟ تقویٰ. کیسے حاصل ہوگا؟ یہ جو سرمایہ ہے, اس کے مزے کی بات ہے کہ سرمایہ بھی اللہ نے ایک ہی مرتبہ کے لیے دیا ہے. جی یہ بھی بہت مشکل ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ باپ نے بیٹے کو کچھ کیپیٹل دیا, سرمایہ, جاؤ بیٹا تم یہ جو ہے بزنس کرو, تجارت کرو. بیٹا اگر کاٹا وٹا ہو گیا تو پرواہ کی بات ہے, میں اور دے دوں گا, میں اور دے دوں گا. نہیں, یہاں ایسا نہیں, اور نہیں ملنے والا ہے. ایک مرتبہ, ایک چانس ہے, دوسرا کوئی چانس نہیں ملے گا. ایک دفعہ تمہیں سرمایہ حیات دے دیا ہے ہم نے, پھر نہیں دیں گے. اور یہ بتا دیا, پہلے سے اعلان نہیں کر دیا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا. ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ چیز ملی, پھر نہیں ملنے والی. اور اگر کہیں امید ہوتی کہ پھر ملے گی تو انسان اتنی احتیاط سے کام نہیں کرتا. خدا بندے عالم نے اعلان کر دیا کہ حتی اذا جاء احدہم الموت, جب کسی کا کیپیٹل ختم ہو جائے گا, سرمایہ جب ختم ہو جائے گا, موت کیا ہے؟ اسی سرمایہ کے ختم ہو جانے کا نام تو موت ہے نا. جس دنیا میں اللہ نے کیپیٹل ہمیں دے کر کے بھیجا تھا یہ ختم ہو گیا, یعنی موت. کیپیٹل ختم ہو گیا, ہم نہیں ختم ہوئے ہیں, یاد ہے. اگر سرمایہ کے ساتھ ہم بھی ختم ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. سرمایہ تو اسی وقت ہمارے کام میں آتا ہے نا جب ہم ہوں. اگر ہم ہیں ہی نہیں تو سرمایہ کس کام کا؟ سرمایہ ختم ہو جائے گا, ہم نہیں ختم ہوں گے, ہم تو رہیں گے, ہم تو باقی ہیں. سرمایہ ختم ہو جانے کے بعد بھی ہم باقی ہیں. پریشانی وہی ہوتی ہے جہاں ہم ہوں اور سرمایہ نہ ہو, خالی ہاتھ ہم ہوں جہاں. مشکل تو وہی ہوتی ہے, یا ہم ہی نہیں ہیں اور سرمایہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ہم ہیں. حتی اذا جاء احدہم الموت, اسلام میں موت فنا نہیں ہے, مٹ جانا نہیں ہے. ہم نہیں مٹیں گے, ہم تو باقی رہیں گے. ختم کیا چیز ہوگی؟ وہ سرمایہ جو دنیا میں دے کر کے بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ سرمایہ ختم ہو گیا. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی, جب اچانک سرمایہ ختم ہو گیا, ہاتھ خالی ہو گیا, مگر ہم باقی ہیں, ہماری جو ہے ضرورتیں باقی ہیں. اب انسان پریشان ہو جاتا ہے نا, اب شرمندگی, اب پشیمانی, کیوں ہم نے ایسا کیا, اے کاش سنبھال سنبھال کے خرچ کیے ہوتے, اے کاش اس کو وہاں انویسٹ کیا ہوتا کہ اگر آج ہمارے پاس 1000 ہے تو 1000 تبدیل ہو جاتا, 10,000 میں 20,000 میں تبدیل ہو جاتا. اب افسوس کر کرتا ہے انسان, شرمندہ نادم. قال رب ارجعونی, ایسے موقع پہ انسان اللہ سے کہے گا تھوڑا سا اور دے دے کیپیٹل, تاکہ اب کی ان شاء اللہ بہت سنبھل سنبھل کے کام کریں گے, پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے. اب تو وہی لگائیں گے سرمایہ جو ہمیں جنت تک لے جا سکے. اب وہ منصب, گاڑی, بنگلہ, شہرت, مقبولیت, چٹخارے دار کھانا, مزے دار, اس میں نہیں. اب کہاں صرف کریں گے؟ اب وہی صرف کریں گے جو ہمیں جنت سے قریب کر سکے. لعل عمل صالحا فیما ترک, جواب کیا دیتا ہے وہ کریم؟ دے دے گا کلا, نہیں, بالکل جواب صاف, کلا انہا کلمت ہوا قائل, بکواس کر رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اب اسے کچھ نہیں ملے گا. بنو مرائہم برزخن الی یوم یبعثون, اس کے بعد برزخ ہے قیامت تک جب اٹھائے جائیں گے, اور اب دیکھیں گے کہ مشکلات کو برزخی سے جو ہے مشکلات کا احساس شروع ہو جاتا ہے, لیکن پہلا اصل احساس کہاں ہوگا؟ قیامت میں اصل احساس ہوگا, نہیں ملنے والا. اچھا کریم نہ کہہ دے, بہت عجیب بات ہے, کریم ہے نا. جس نے پہلی مرتبہ کیپیٹل بغیر مانگے دے دیا تھا, مانگا تھا ہم نے, ہم نے مانگا تو نہیں تھا اس سے, اس نے بلا مانگے ہمیں یہ کیپیٹل دیا تھا. ایک صاحب ہیں, اتنے نیک ہیں, اتنے خیر خیرات والے کہ بلا مانگے دیکھا کہ اس کو چاہیے, آؤ آؤ ہم سے دو, 1,00,000 ڈالر, 2,00,000 ڈالر, 20,00,000 ڈالر, اتنے نیک ہیں. اب ہم ان کے پاس مانگنے گئے ہیں, ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں دے دے, تو تب نہیں دیں گے. اچھا سخی, تو سخاوت کے خلاف بات ہے. جو سخی مانگے بغیر دے سکتا ہے, وہ سخی مانگنے پر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیا خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کل پیسہ بہت تھا ان کے پاس, خوب بانٹ رہے تھے, اب ختم ہو گیا. یا کل یہ سخی تھے, آج بخیل ہو گئے ہیں. خدا تھا, انسان تو تبدیل ہو جاتا ہے نا, لیکن خدا ایسا نہیں ہے نا, اس کے خزانے میں کمی آتی ہے. کتنا ہی بانٹتے, کتنا ہی بانٹتے, اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے. اور نہ وہ جو ہے بخیل ہوا ہے, وہ کل بھی کریم تھا, آج بھی کریم, پھر دے کیوں نہیں رہا ہے؟ دے دے دوبارہ سرمایہ, پھر کیوں کہتا ہے کل اب نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں دیں گے, یہ جو ہے بخل نہیں ہے, بلکہ کرم کی ایک دوسری شکل ہے. ایک کرم کی دوسری شکل, ایک اور احسان ہے اس کا. یعنی کیا مطلب احسان؟ کیسے یہ احسان ہے؟ یہ کرم کیسے ہو گیا انکار کر دینا کہ ہم نہیں دیں گے؟ کرم یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کر کے شیطان کے بہکانے کا دروازہ بند کر دیا. ورنہ یقین جانیے اگر خدا یہ اعلان نہ کر دیتا کہ ہم ایک ہی دفعہ زندگی دیں گے پھر نہ دیں گے, शायद ही कोई इस दुनिया में ऐसा मिलता जो अपनी पहली जिंदगी में नेक काम करता है, शायद ही कोई ऐसा मिलता है। मासूमीन की बात अलग है, जुदा है वो, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। सब ये कहते हैं भाई एक दफा जिंदगी मिली इसे एंजॉय करो, अभी एक ही जिंदगी पर तो ये आलम है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, एक इस लाइफ को एंजॉय करो, खूब ऐश करो, खूब मस्ती करो, लूटो मारो खाओ कुछ भी करो, जरायम गुनाह कुछ भी करते रहो, जब ये वाली जिंदगी खत्म होने लगेगी मलकुल मौत आएंगे कहेंगे रब इरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन, पलने वाले एक जिंदगी और वो करीम दे देगा। अगली वाली जिंदगी में खूब तौबा करेंगे, खूब इबादतें करेंगे, खूब नमाजें पढ़ेंगे, सब कुछ उसमें हो जाएगा, इस वाली जिंदगी में हम गुनाहों की जिंदगी बसर करेंगे। परवरदगार ने ऐलान करके शैतान के बहकाने का दरवाजा बंद करके हम पे करम किया है, तो करम है उसका, बुखल नहीं है, सखावत की दूसरी शक्ल है, सखावत की दूसरी शक्ल है, दूसरा पहलू है सखावत का, कल अब नहीं मिलेगा। और कहीं परवरदगार दूसरी जिंदगी भी दे देता हमें ना, तो जिस तरह से पहली जिंदगी में अदात न की थी दूसरी में भी न करते हैं। फिर शैतान बहकाता जो अल्लाह तुम्हें एक दफा मोहलत दे सकता है क्या वो दोबारा मोहलत नहीं दे सकता, वो तुम्हें फिर मोहलत दे सकता है, लिहाजा एक जगह पहुंच करके वो एक लकीर खींच देनी चाहिए थी, इसके बाद नहीं। मोहलतें तो अल्लाह हमें दे ही रहा है, कम मोहलत दी है अल्लाह ने हमें, ये जिंदगी क्या है हमारी, इसमें मोहलत ही तो है, वरना हम इस काबिल कहां थे कि जिंदगी हमारी बाकी रहती। जितनी नाफरमानी अल्लाह की हमने की है, जितना गुनाह हमने, कितनी दफा झूठ बोला है, वरना वो चाहता तो पहले ही झूठ पर हमें गूंगा बना देता, बना सकता नहीं बना सकता था, कितनी गीबतें की है हमने, अगर पहली गीबत पर खुदा हमारी जबान पे ताले लगा देता, बस तुम इस लायक नहीं हो, तुमको हमने एक अमानत दी थी, तुमने उसमें ये जो है खयानत की, अब तुमको नहीं देंगे, कर सकता था कि नहीं कर सकता, उसमें ताकत है या नहीं कि हमें जो है गूंगा बना दे, उसमें ये ताकत है, वो करेगा ये काम, जबान पे ताला लगाएगा, हम अभी दे, अभी तो ये जो है मोहलत दे रहा, ये जिंदगी जो है मोहलतों का तसलसल है, मोहलतों का ये जो सिलसिला है, सिलसिला दराज चल रहा, एक झूठ बोला, दो झूठ बोला, तीन झूठ बोला, शायद अब की इसलाह हो जाए, शायद अब की इसलाह हो जाए, शायद अब की इसलाह हो जाए, बार 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 खुदा मोहलतें देता जा रहा है हमें। हाँ एक जमाना आएगा जब जबान को बोलने की ताकत नहीं रह जाएगी, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, वो कयामत के दिन है, कयामत के दिन जबान पे ताला लगा देंगे, अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना बिअयदीहिम व अर्जुलिहिम, बोलेंगे अब जबान नहीं बोलेगी, अब हाथ बोलेंगे, अब पैर बोलेंगे, क्यों जबान को क्यों बंद कर दिया, जबान को क्यों ताला लगा दिया, इसलिए कि जबान को झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो चुकी है, फितरत इंसानी में झूठ नहीं है, दरोगोई इंसान की फितरत में नहीं है, झूठ बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, मस्त चाहिए, पहली मरतबा जो लोग झूठ बोलते हैं चेहरा उनका लाल हो जाता है, ये जो है लुकनत आ जाती है जबान में, बदन कांपने लगता है, इतनी आसानी से कोई झूठ नहीं बोलता, तो प्रैक्टिस करते 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 कुछ माँ बाप सिखाते हैं झूठ बोलना, कुछ प्रैक्टिस वो करवाते हैं, वो बच्चा देखता है ना, बच्चे का जहन कैमरा है, सारी एक ही हरकतों को हमारे जो है वो महसूस कर रहा है अपने कैमरे में जो कुछ हम कर रहे हैं। इब्तदा में बच्चा झूठ नहीं बोलता, टेलीफोन आया, घंटी बजी, बच्चे ने उठा लिया टेलीफोन, जो साहब हैं उन्होंने फोन किया कि आपके डैडी हैं घर में, अच्छा वो फोन उन साहब का जिनसे डैडी डरते हैं घबराते हैं, बहरहाल उनसे नहीं मिलना चाहते, फौरन बेटे से कहा बेटा कह दो कि डैडी घर में नहीं है, और बच्चे ने कहा डैडी कह रहे हैं कि हम घर में नहीं है, डैडी कह रहे हैं कि हम घर में नहीं है, क्योंकि बच्चे की फितरत में झूठ बोलना तो है, अब हम डांटते हैं बच्चे को, ऐसे नहीं, ये मत कहो कि डैडी कह रहे हैं, अपनी तरफ से कहो कि डैडी घर में नहीं है, तो डांट डांट के उसे झूठ बोलना सिखाते हैं, और कभी मोहब्बत से कह देते हैं कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, कभी कभी कह भी देते हैं ना, आहिस्ता से कह देते हैं कि झूठ बोलना ये जो है बुरी बात है, और पूरी ताकत से उसको सिखाते हैं कि झूठ बोलना जरूरी है, अच्छी चीज है। तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है, आदत, और इतनी सफाई से भी इंसान झूठ बोलने लगता है तो उसके झूठ पर सच का शुभा होता है। ये सारी खबर रसा एजेंसियां जो यहाँ की हैं, ये सारे टेलीविजन यहाँ के, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम लोग कुरान पे उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना ये जो है CNN पे भरोसा कर लेते हैं। अरे साहब, CNN ने खबर दी, भला झूठ गएगा? अक्सर यहाँ गुफ्तगू होती है, आप BBC हमारे यहाँ, BBC की खबर है भाई, BBC झूठ बोलेगा? यानी कुरान पे उतना भरोसा नहीं होता जितना BBC की खबर पे भरोसा कर ले, इतनी सफाई से झूठ बोल, जबकि देख रहे हैं, सुबह शाम देख रहे हैं, राई का पहाड़ बनाते रहते हैं, सफेद को स्याह, स्याह को सफेद करते रहते हैं, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। कयामत का जब दिन आएगा, वहां पर हिसाब है ना, अदालत लगेगी, कचहरी लगेगी, खुदा के बारगाह में हाजिर होंगे, सवाल जवाब होगा, तो वहां पर इंसान झूठ बोलेगा। ने मुझसे पूछते, ये बताओ तुमने फला यतीम के ऊपर हाथ उठाया था, फौरन कहते हैं, ये जबान बोलती है, भला मेरी शक्ल से लगता है कि मैं किसी पर जुल्म करूंगा, मैं तो चींटी को भी नहीं मार सकता, चल ऐसा किसी यतीम को जिससे अर्श इलाही थर रहा जाता है, भला मैं ऐसा जुर्म करूंगा, साफ साफ झूठ बोल जाता है। इससे तो पूछेंगे ही नहीं, अल्यौम नख्तमु अला अफवाहिहिम, आज हम जबान पे तारे लगा देंगे, वो तो कल्लमुना बेअयदीहिम व अर्जुलिहिम, अब हाथ बोलेगा, इसको झूठ बोलने की आदत ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं ना हाथ को है, पैर बोलेगा, खाल बोलेगी, रुआ रुआ बोलेगा। जब पूछेगा खुदा तुमने फला मजलूम, फला ये जो है बेगुनाह पे हाथ उठाया था, हाथ कहेगा हाँ हाँ सही है, इसने हाथ उठाया था, फला गुनाह की महफिल में तुम गए थे, पैर बोलेगा कि हाँ ये गया था, खाल बोलेगी, और इंसान ये जो है तड़प करके जो है बिलबिला करके खाल से शिकायत करेगा, कम बस सारी सारा गुनाह, सारी मासियत, सारा करप्शन हमने तेरी ही खातिर किया था, तू ही मेरे खिलाफ, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तेरे ही खिलाफ हमने सारा गुनाह किस लिए किया था, चोरी चमारी किस लिए किया था भाई, हमारे पास या जिस्म है या रूह है, रूह को तो गुनाह अच्छा नहीं लगता ना, जब हम चोरी के माल से बिस्तर बनाते हैं, रूह तड़प रही होती है, बदन को मजा आता है, गुनाह ये हासिल की हुई दौलत से एयर कंडीशन लगा करके जब हम आराम करते हैं तो रूह तड़प रही होती है, जिस्म को मजा मिलता है, और कयामत में जिस्म ही हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, जिसमें इंसान कहेगा कालू ले जुलूते हिम ले मा शहीद तुम्हारा ना, तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो, हमने तो सब कुछ तुम्हारे ही खातिर किया था, और ये बताओ तुम्हें बोलना कहां से आ गया, बोलती तो जबान थी, हम ये समझते हैं कि जबान नहीं बोलती है, मशीयत इलाही बोलती है, कुदरत इलाही बोलती है, अल्लाह की दी हुई सलाहियत बोल रही है, तुम्हें कहां से बोलना आ गया, खाल जवाब देगी, अंतकन अल्लज़ी अंतका कुल्ल शय, जिसने जबान को बोलने की सलाहियत दी थी उसी अल्लाह ने हमें भी सलाहियत दे दी, जबान नहीं बोलती, अल्लाह की दी हुई सलाहियत बोलती है, पत्थर में अगर सलाहियत पैदा कर दे पत्थर बोलेगा, दरख्त में अगर सलाहियत पैदा कर दे तो दरख्त बोलेगा। खुदा बंदे आलम से दुआ है कि हम सबको तौफीक इनायत फरमाए, जो सरमाया अल्लाह ने हमें दिया है, जो कैपिटल हमें दिया है, हम उस कैपिटल का सही इस्तेमाल कर सकें, इस सरमाए हयात से हम अपने आखिरत का सामान फराहम करें। वस्सलाम अलैकुम।